मुख्य समाचारों में, क्वींसलैंड में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 10। रूस के सैन्य हमले से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग, और न्यूजीलैंड में 12वीं महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप की शुरुआत। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। क्वींसलैंड प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में ये अभूतपूर्व बाढ़ का प्रकोप बना है। 53 वर्षीय व्यक्ति का शव पोर्ट ऑफ ब्रिस्बेन में एक घाट के नीचे मिला। इस संकट से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। राज्य के दक्षिण पूर्व में गंभीर तूफान की चेतावनी अब डाउनग्रेड कर दी गई है, लेकिन मौसम विज्ञान ब्यूरो का कहना है कि अचानक बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। सुश्री पैलेशे ने आज स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लेने के लिए माफी मांगी, चाहे मौसम उम्मीद से कुछ कम खराब रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां हालात आसान हो रहे हैं, वहीं आज शाम को बारिश और तूफान की आशंका है।
Let's face it, it's climate change. I mean, I've never seen so many natural disasters. We seem to be dealing with more cyclones, more floods. A couple of years ago, the commissioner and I were just talking the other day, we had the catastrophic fire event in central Queensland. Queensland never seen catastrophic before. But we're a great state, we're a resilient state. And I'll tell you what, one thing is the people of this state inspire me every day.
न्यू साउथ वेल्स SES कमिश्नर कार्लिन यॉर्क का कहना है कि टीम को रात भर सहायता के लिए 700 कॉल मिले और 13 बाढ़ बचाव कार्य किए गए। उन्होंने बताया कि नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया गया है और निवासियों को उनके घरों और व्यवसायों में वापस लाने की कोशिश हो रही है। सुश्री यॉर्क का कहना है कि अतिरिक्त 600 संसाधन पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के माध्यम से भेजे गए हैं, साथ ही 280 ऑस्ट्रेलियन रक्षा बल के कर्मी समुदायों की मदद के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई के प्रयासों के बावजूद राज्य अभी खतरे में है।
There's a lot of support, a lot of work going up there, as well as the local units that are part of the community, represent the community, and they're out here, they're helping them clean up. So again, based on the forecast from the Bureau, we're not past the danger period yet. The rivers are very high, fast flowing, there's a lot of debris and it's very dangerous out there. And these thunderstorms and isolated heavy showers create an additional risk to the community.
रूस के सैन्य हमले के बाद यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित ज़ापोरिज्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 6 रिएक्टर हैं और ये देश की बिजली उत्पादन का लगभग 25% प्रदान करता है। यूक्रेन के विदेश मामलों के मंत्री दमित्रो कुलेबा ने घटना के समय एक ट्वीट जारी किया, जिसमें कहा गया कि रूसी सेना संयंत्र पर हर तरफ से गोलाबारी कर रही है। उन्होंने रूसियों से तुरंत इसे रोकने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर वहां विस्फोट होता है तो ये चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा होगा। यूक्रेन के परमाणु नियामक ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को बताया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की साइट पर विकिरण के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रवक्ता एंड्री ट्रुच का कहना है,
Fire at the Zaporizhzhia nuclear power plant continues. The firefighters can't approach the place where they could extinguish the fire. They're simply being shot at point blank range. The first reactor has already been hit. Come to your senses.
बेलारूस में शांति वार्ता के दूसरे दौर में यूक्रेन और रूस मानवीय विषयों पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो पोडोलेक का कहना है कि वार्ता उनके अपेक्षित परिणामों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन भोजन दवा निकासी के मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री पोडोलेक का कहना है कि अस्थायी युद्ध विराम की संभावना से आवश्यक आपूर्ति के परिवहन के लिए मानवीय गलियारे यानी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाने में मदद मिलेगी।
Parties have reached an understanding about joint provision of humanitarian corridors for evacuation of civilians, and also for the delivery of medicaments and food to the places where the most hostile fighting takes place, with the possibility, I underline with the possibility, to temporary ceasefire in the evacuation sector during the period of evacuation. It means we won't be everywhere. Potential ceasefire will only be observed at the places where the humanitarian corridors will be created during the evacuation.
Unka kehna hai ki dono paksh teesre satr mein baatcheet jari rakhne par sehmat ho gaye hain. Rusi senaye Europe mein sabse bade parmanu sanyatr ke paas mein Ukraine ke dakshin mein ek mahatvapurna urja utpadak shahar Enerhoder ke niyantran ke liye lad rahi hain. Wahan nivasi Rusi sainikon ko pravesh se rok rahe the. पूर्वी शहर मारी उल्पली में यूक्रेन के मुख्य बंदरगाह पर भी रूसी सैनिकों का हमला हुआ है और अब वहां पानी या बिजली नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि वो घायलों को बाहर नहीं निकाल सकते. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संपर्क बहुत देर से हुआ है.
It's a pity that it began after the beginning of this war, but we have it. And I'm my appreciation to him and to his team. And so we can speak now often.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो वार्ता के लिए रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहते हैं और उन्होंने पश्चिमी देशों से इस आक्रमण से लड़ने के लिए मजबूत सैन्य सहायता देने का आग्रह किया है. श्री ज़ेलेंस्की कहते हैं कि शब्द शॉट से अधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने नहीं सोचा था कि रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का एक और दौर आशाजनक होगा.
What do you want from us? Go away from our land. You don't want to leave now? Sit down with me at the negotiation table. I'm available. Sit with me, but not at 30 meters like you welcomed Macron and Scholz and others. I'm your neighbor. You don't need to keep me at a 30-meter distance. I don't bite. I'm a normal man. Sit down with me. Let's talk. What are you afraid of?
उनका कहना है कि यूक्रेन को समर्थन देने के लिए दुनिया बहुत धीमी रही. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पश्चिमी नेताओं से यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने का आग्रह किया है ताकि रूसी युद्धक विमानों को यूक्रेन की पहुंच में रुकावट का सामना करना पड़े. हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और नेटो सहयोगियों ने इसे खारिज कर दिया है. शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी का कहना है कि एक सप्ताह में लगभग 10 लाख लोग यूक्रेन से भागे हैं. श्री ग्रांडी का कहना है कि जब तक संघर्ष का तत्काल अंत नहीं होता तब तक लाखों और लोग यूक्रेन से भागने के लिए मजबूर होंगे. उनका कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा.
In just 7 days, 1 million people have fled Ukraine. Uprooted by this senseless war. I have worked in refugee emergencies for almost 40 years, and rarely have I seen an exodus as rapid as this one. Hour by hour, minute by minute, more people are fleeing the terrifying reality of violence.
LGBTIQ समुदाय के सदस्य और सहयोगी इस साल यूनाइटेड वी शाइन थीम के तहत वार्षिक मार्डिग्रा परेड जो कल शनिवार को है उसकी तैयारी कर रहे हैं. क्वीर कल्चर का जश्न मनाते हुए और सामाजिक समानता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए हजारों मार्चर्स और 160 से अधिक झांकियां कल शनिवार को होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी. फर्स्ट नेशन के कॉमेडियन स्टीवन ऑलिवर परेड की एंकरिंग कर रहे हैं और उन्होंने आधिकारिक ब्रॉडकास्टर एबीसी से कहा कि इसमें स्वदेशी समावेश होना महत्वपूर्ण है.
Well, you got the First Nations float stuff there like that, so you know, the people, Aboriginal people from all over Australia as well as Torres Strait Islander mob and stuff like that. You know, which I like to nickname Faboriginals and Torres Strait Islanders.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समूह के देशों की कल गुरुवार को हुई बैठक में एक बार फिर रूस और यूक्रेन दोनों देशों को वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया. भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बैठक में यूक्रेन रूस के संघर्ष से पैदा हुई स्थिति और मानवता पर उसके प्रभावों पर भी चर्चा की गई. डिजिटल माध्यम से हुई इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के सम्मान पर जोर देते हुए इसके महत्व को रेखांकित किया। क्वाड चार देशों का संगठन है, इसमें भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमरीका के 73 सेंट और भारत के 55.89 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में, क्रिकेट में 12वां महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप आज न्यूजीलैंड में शुरू हो गया। कल शनिवार को ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के महान खिलाड़ी रॉड मार्श का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। श्री मार्श ने 1970 से 1984 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 96 टेस्ट खेले। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। मेलबर्न में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। होबार्ट में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। कैनबरा में बारिश, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें, अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री। और डार्विन में तूफान या बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।